أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب قیام و انقلاب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ معاشروں کو دو طرح سے کیوں دیکھا گیا ہے. اس سے پہلے ہم عرض کر چکے کہ معاشرے کے بارے میں دو طرح کی نگاہ ہے اور قرآن مجید معاشرے کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک شخصیت کا حامل سمجھتا ہے اور اس پر حاکم ہیں قوانین, اور جب اس نگاہ سے دیکھا جائے تو تب ہی تاریخ سبب عبرت قرار پا سکتی ہے ورنہ نہیں. ہم نے یہ سوال اٹھایا گفتگو کے آخر میں کہ اگر کوئی مکتب کوئی معاشرے کو صاحب شخصیت اور صاحب طبیعت و نیچر جانتا ہو اور دوسری جانب سے اس کو ایک زندہ اور کمال کی جانب بڑھنے والی شخصیت کے طور پر دیکھتا ہو, تو پھر اس کمال کی تفسیر کیا ہے, انسان کا کیا کردار بنتا ہے اس کمال کے اندر, اور خصوصاً جب ہماری گفتگو اس عظیم انتظار کے بارے میں ہے تو وہ عظیم انتظار کس شکل و صورت کا ہونا چاہیے, اس کا جواب ہم تلاش کر رہے ہیں. شہید بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ کے بارے میں دو طرح کی نظر کا پیدا ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ انسان کو دو طرح سے دیکھا گیا ہے. انسان کی ماہیت, انسان کی حقیقت, انسان کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو دو نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. وہ دو نگاہیں کیا ہیں؟ ایک نگاہ انسان کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر انسانی شخصیت نہیں رکھتا, فاقد شخصیت انسانی ہے. حیوانیت سے بڑھ کر, حیوانیت سے ماورا اس کے اندر کوئی سرشت نہیں پائی جاتی, نہ سوچ کے میدان میں اصالت رکھتا ہے, نہ احساسات اور خواہشات کے اندر کوئی اصالت اور بنیاد رکھتا ہے, کچھ نہیں رکھتا. ایسے میں اگر سوال کیا جائے اس نگاہ کے حامل لوگوں سے, اگر پوچھا جائے کہ اچھا بتائیے آئیڈیل انسان کون ہوتا ہے, انسان کامل کون ہوتا ہے, تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بالآخر انسان کس کو فالو کرے, کیسا ہونا چاہیے انسان کو, تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. وہ یہی کہیں گے کہ کوئی انسان آئیڈیل نہیں ہوتا, معاشرہ اس کو جیسا بنا دے, جو بنا دے بس وہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ خود انسان ہے کیا چیز کہ اگر وہ انسانیت اس سے لے لی جائے تو پیچھے کیا بچے, باقی کیا بچے, تو اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. یہی کہیں گے کہ یہ خام مادہ ہے, جو شکل مل جائے, جو صورت مل جائے بس وہی ہے, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. اس نگاہ کی بنیاد پر, دوسری نگاہ بعد میں عرض کریں گے, اس نگاہ کی بنیاد پر جو چیز انسان کے اندر اصالت رکھتی ہے اور غریزے کے طور پر اس کی سرشت کے اندر موجود ہے, وہ فقط حیوانی صفات ہیں اور بس, حیوانی صفات. شہید بیان فرماتے ہیں کہ پس اس نگاہ کی بنیاد پر, ان لوگوں کے نقطہ نظر کی بنیاد پر, انسان ایک ایسا موجود ہے جو مادیات کے اندر اسیر ہے اور جکڑا ہوا ہے, جبر کا محکوم ہے, ایسا آئینہ ہے کہ جو اپنے ارد گرد اور اپنے علاوہ اپنے ماحول میں موجود چیزوں کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ اس کا کوئی ہدف ہے نہ ہی اس کا کوئی مقصد ہے. یہ تو تھی ایک نگاہ. اب دوسری نگاہ کیا ہے کہ انسان کو دوسری نگاہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ شہید بیان فرماتے ہیں کہ یہ دوسری نگاہ فطری نگاہ ہے, فطرت کی اساس اور بنیاد پر قائم ہونے والی نظر ہے. इस निगाह के मुताबिक इंसान सरिश्ते इलाही का हामिल है, इलाही नेचर और इलाही तबीयत रखता है, हक जू है, हक तलब है, और इसकी फितरत हक की तरफ माइल है, हक के आगे झुकने वाली है। शहीद बयान फरमाते हैं, इस निगाह की बुनियाद पर इंसान खुद अपने ऊपर हाकिम है। तबीयत, माहौल, फितरत, सरनविश्त, इन सब के जबर से आजाद है, खुद हाकिम है अपने ऊपर। बयान फरमाते हैं शहीद कि इस निगाह की असास और बुनियाद पर इंसान के लिए जो चीज़ असालत रखती है, जो चीज़ बुनियादी हैसियत रखती है, जो चीज़ बुनियादी तरीन अहमियत की हामिल है इंसान के लिए, वो इंसानी अकदार और इंसानी वैल्यूज़ हैं। फरमाते हैं कि छुपी हुई जो सलाहियतें होती हैं बिलकुवा और पोटेंशियली, कहते हैं कि ये जो फितरी तकाजे हैं ये इंसान के अंदर बिलकुवा तौर पर मौजूद होते हैं, पोटेंशियली उसके अंदर ये फितरी तकाजे मौजूद होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हक और हकीकत और अदालत और इन अखलाकी कमालात और मकारिम का तलबगार रहता है, उनका ख्वाहां रहता है ये इंसान हमेशा। अपनी अक्ल की कुव्वत से मुआशरा साज बन सकता है, इंतखाब में आज़ाद है, अपने फैसले खुद कर सकता है, अपनी सोची हुई प्लानिंग को अमली मरहले में दाखिल कर सकता है। वही इलाही इसका हाथ पकड़ती है और इंसानी अकदार के मामले में इसको आगे लेकर बढ़ती है। शहीद कहते हैं कि इस बात में शक नहीं है कि इंसान मुआशरे से तासीर लेता है, मुआशरा इंसान पर असरअंदाज होता है, लेकिन ये इंसान भी मुआशरे पर असरअंदाज होता है। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली नुक्ता कहाँ है, असली बात कहाँ है? असली बात यहाँ पर है कि इंसान मुआशरे को जब रद्द अमल दिखाता है तो ये हैवानों जैसा ना आगाहाना रद्द अमल नहीं होता। ये असासी और बुनियादी बात है, हैवानों की तरह ना आगाहाना रद्द अमल नहीं होता, बल्कि इंसान की बुनियादी तरीन सिफत कि जब वो सिफत इसके अंदर पाई जाती हो तो ये इंसान कहलाने का हकदार है, लेकिन अगर वो सिफत इससे छिन जाए या ये खुद गंवा बैठे उस सिफत को, तो फिर वो अगरचे चलता फिरता इंसानों जैसा लगता है लेकिन इंसान नहीं होता। वो क्या है? वो इसका अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल है, अपने नफ्स के ऊपर हुक्मरानी, तसल्लुत और हाकिमियत। अगर ये सिफत इंसान के अंदर पाई जाए, अपने ऊपर कंट्रोल रखता हो, अपने नफ्स पर हाकिम हो, तसल्लुत रखता हो, तो इंसान है, लेकिन अगर ये सिफत चली जाए तो इंसानों जैसा है शक्ल सूरत में, शक्ल सूरत में इंसानों जैसा लगता है, लेकिन शायद इंसान उसको नहीं कहा जा सकेगा। अब हम आते हैं कि कुरान मजीद इंसान को किस निगाह से देखता है, पहली निगाह से या इस दूसरी फितरी निगाह से? तो बड़ा वाज़ेह है कि कुरान मजीद इंसान को इसी दूसरी निगाह से देखता है, फितरी निगाह से देखता है। शहीद बयान फरमाते हैं कि तारीख में अखलाकी अवामिल और फैक्टर्स फैसला कुन तासीर रखते हैं और कुरान मजीद का फोकस तमरकुज भी इसी बात पर है कि अखलाकी जो अवामिल हैं ये फैसला कुन किरदार अदा करते हैं मुआशरों के अंदर, तारीख के अंदर, जिसकी वजह से तारीख एक हुसूल मारिफत का बेहतरीन मंबा और सोर्स करार पाई है। शहीद कहते हैं कि अगर तारीख महज बेरब्त इत्तेफाकात का मजमुआ होता तो तारीख और अफसाने के अंदर कोई फर्क ना होता। कुरान मजीद में दो तरह के किरदार बयान किए गए। एक गिरोह है कि जो मजमुआ है वडेरों का, जिसको मला कहा गया है, इसी तरह से मुतरफीन, मुस्तकबिरीन, और एक गिरोह है मुस्तज़अफीन, हक तलब लोग। तो कुरान मजीद के अंदर ये दो तरह के रोल और किरदार बयान किए गए। और फिर शहीद बयान फरमाते हैं कि फजर तारीख से मुसलसल ये सिलसिला जारी है, और ये मुसलसल जिहाद जारी है जो कुरान मजीद की नज़र में मानवी और इंसानी कोशिश का नाम है, ना कि मादी और तबकाती जंग का, कि एक तरफ मुस्तज़अफीन है तो एक तरफ मला हैं, मुतरफीन हैं, मुस्तकबिरीन हैं, और इनकी जंग है मुस्तज़अफीन का, जिहाद इनके साथ जारी है। तो वो मादी और तबकाती जंग नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की निगाह में ये एक मानवी और इंसानी कोशिश का नाम है। ये किस बुनियाद पर है? इंसान के बारे इस निगाह की बुनियाद पर है कि इंसान को कुरान मजीद किस निगाह से देखता है, इंसान को खल्क करने वाला खालिक इंसान को किस तरह बयान करता है, किस तरह देखता है, किस तरह बनाया है उसने इंसान को। जब हमें इंसान की हकीकत समझ में आ जाएगी और हम इंसान को साहिब इख्तियार समझेंगे, अपने नफ्स पर तसल्लुत रखने वाला समझेंगे, और अपने नफ्स पर तसल्लुत रखने वाले लोग इसी मानवी आज़ादी की खातिर रुकावटें हटाने के लिए मुस्तज़अफीन जो हैं वो मुस्तकबिरीन के सामने जब आएंगे, तो ये दो ग्रोह तश्कील पाएंगे मुआशरे के अंदर। अब एक निगाह ये है इंसान के बारे में, और एक निगाह इंसान को हैवान से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। जब ये दो निगाहें हैं तो फिर मुआशरे को भी दो तरह से समझा जाएगा। जब मुआशरे को दो तरह से समझा जाएगा तो इस मुआशरे के अंदर, इस तारीख के अंदर रूनुमा होने वाले इनकलाबात और तब्दीलियों को भी दो अलग जावियों से देखा जाएगा, और इन्हीं तब्दीलियों की असास पर जहूर को दो अलग अलग जावियों से देखा जाएगा, और उस जहूर की बुनियाद पर इंतज़ार का कॉन्सेप्ट भी मुख्तलिफ हो जाएगा। खुदावंद मुताल से दुआगो हैं कि हमें इन मतालिब को समझने की तौफीक अता फरमा परवरदिगारा, और हमें हकीकी मानों में तामीरी इंतज़ार की राह अपनाने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह शहीद की निगाह को कि तामीरी इंतज़ार क्या होता है और तखरीबी इंतज़ार क्या होता है, और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये उसी के मुकद्दमात हैं, इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।